from the conference center
Salt Lake Shahar ke Temple Square ke sammelan kendra se ye 187th Arthur Varshik Mahasammelan ki general mahilaon ki sabha hai Ishu Masih ka girjaghar antim dino ke santon ka jo isme bhashan dengi ve girja ke pratham adhyakshta aur general mahilaon ki sangathan mein se hai sab ke महिलाओं और महिलाओं और सात आठ साल की लड़की और ऊपर साथ में है गिरजाघर लीडरों की शिक्षा और आदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुई है सभा में बहन जीन बी बिंघम रिलीफ सोसाइटी की जनरल प्रधान कंडक्ट करेगी प्यारी बहनों हम आप सब के स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर के अंतिम दिनों के संतों का 187th आर्थर वार्षिक महासम्मेलन के महामहिलाओं की सभा में हम यहां सॉल्ट लेक शहर यूटा के सम्मेलन केंद्र में इकट्ठित हैं और हम बहुत आभारी हैं और जानते हैं कि दुनिया भर में जगह जगह बहनों के ऐसा ही संगठन इकट्ठा हुए हैं हमें वही रकम और सभी धर्म के दोस्तों को स्वागत करते हैं हम सभा के संचालन करेंगे हैं हमारा नाम जीन बिंघम है और हम अभी सहायक संस्था के महाअध्यक्ष की सेवा करते हैं प्रधान थॉमस मॉनसन सभा के को अपने घर से देख रहे हैं हम उनसे प्रेम करते हैं हम प्रथम अध्यक्षता के और सब सदस्य को आज रात हम उन लोगों के साथ रह के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके साथ सब सलाह देने के लिए प्रस्तुत और पलावर के विभाग के भी आभारी हैं सभा का गाना सब पार्क शहर यूटा इलाका के स्टेक से सहित संस्था की क्वायर बहनों गाएंगी वो गाएंगे लेट जायन इन हर ब्यूटी राइज उसके बाद बहन मेगुमी यामागुची प्रार्थना देंगी और उसके बाद क्वायर गाएगी सिंग प्रेज टू हिम
Thank you.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम बहुत आभारी हैं कि हम आज सम्मेलन में आ सके, हमारे प्रॉफिट की भाषा सुन सके। हम आभारी हैं यीशु मसीह के अटोनमेंट के लिए, जो हमें अपने जीवन में शक्ति देता है। हम आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं हमारे भाषण देने वालों के लिए। हम आशा करते हैं कि हम उनके शब्दों से सुन सके और ज्ञान ले सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
We will now be pleased to hear from Sister Sharon L. Eubank, First Counselor in the Relief Society General Presidency. She will be followed by Sister Neil F. Marriott, Second Counselor in the Young Women General Presidency.
Sister Marriott bolegi Sister Bingham ke baad.
You might not know this, but President आप शायद नहीं जानते, लेकिन प्रधान मानसन और मैं जुड़वा है। जिस दिन मैं उत्तर कैलिफोर्निया में पैदा हो रही थी, वही दिन 36 साल के थॉमस एस मॉनसन सबसे नया देवदूत सस्टेन हो रहे थे। मैं प्रधान मॉनसन परमेश्वर के प्रॉफिट से अपनी खास रिश्ता को प्रेम करती हूँ। प्रधान महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। आप ऐसी कुछ बातें आज भी सुनेंगी। हम आज 40 साल पीछे जाएंगे एक बढ़िया भविष्यवाणी पे जो प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने लिखी। सितंबर 1979 दूसरी ही बारी थी जब पूरी दुनिया के गिरजा ला का महिलाएं अपनी अलग सभा में थी। प्रधान किम्बल ने अपनी भाषण तैयार की, लेकिन वे अस्पताल में थे, तो उन्होंने उनकी अपनी पत्नी कमिला आयरिंग किम्बल को भाषण दिया। बहन किम्बल प्रॉफिट के बात पढ़ी, जिसमें एलडीएस महिलाओं के दुनिया से के कब औरत सब औरत पर प्रभाव की जोर डाली। मैं थोड़ा कुछ पढ़ती हूँ जो प्रधान किम्बल के भाषण में था। अब मेरी प्यारी बहनें, मैं कुछ बोलूंगी जो कभी नहीं बोला गया। अंतिम दिनों में गिरजा में बढ़ाई होगी, बहुत दुनिया में अच्छी महिलाओं के कारण होगी। गिरजा में भारी संख्या में खींच के आएंगी, यह इतना जितना होगा जितना गिरजा का महिला ईमानदारी और साफ रूप से अपने जीवन बताएंगी बिताएंगी में, और जितना तक गिरजा के महिला के विचित्र और अलग रूप से देखा जाएगा। दुनिया के महिला लोग में से जो सच्ची हीरोइन गिरजा में आएंगी, जो ज्यादा परवाह करती है ईमानदारी पे, ये सच्ची हीरोइन में सच्चा विनम्रता है। गिरजा के महिला उद्धारक ही रही, जो एक महत्वपूर्ण ताकत रही। गिरजा के संख्या और आत्मिक बढ़ावत में अंतिम दिनों में कितना प्रोफेटिक घोषणा है। जो दोस्ती सहायक संस्था के महिला, जवान महिला और प्राइमरी की लड़की बनाती हैं, और धर्म के सच्चा विश्वासी धार्मिक महिला और लड़कों से एक महत्वपूर्ण ताकत होगी। प्रधान किम्बल इन महिलाओं की अलग बैकग्राउंड ने हीरोइन बुलाया है। मैंने इतनी ऐसी अच्छी महिला मिली है दुनिया में, इनकी दोस्ती मेरे लिए अनमोल है। आप भी अपने दोस्त और पड़ोसी में इनको जानती हैं। वे गिरजा के सदस्य रही हैं, नहीं रही अभी, लेकिन हमारी दोस्ती से जुड़े हैं। हम कैसे अपना हिस्सा करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। प्रधान किम्बल ने 5 चीजें बताई। पहली है ईमानदार बनना। ईमानदार का मतलब नहीं है कि एकदम सही रहना या कोई गलती नहीं करना। इसका मतलब है परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, अपना पाप और गलती का पश्चाताप करना और आजादी से सबको मदद करना। महिला जो पश्चाताप करती हैं इतिहास बदल सकती हैं। मेरी एक दोस्त जो छोटी उम्र में गाड़ी की धक्के लगी और वह पीड़ा की दवाई से अडिक्ट हो गई। बाद में उसके माँ बाप का तलाक हो गया। एक दिन उसने सोचा अब बस, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पुकारी अपनी मदद के लिए। वह बोली कि उसने सीखा कि यीशु मसीह उसके परिस्थिति से भी शक्तिशाली है, वे उसकी शक्ति के सहारा कर सकता है और पश्चाताप कर सकता है, करवा सकता है, प्रभु और उनके रास्ता पर लौट सकती है। वह ईमानदार है और उसके पास दूसरों के कोष्ठी खुली दिल से इंसान के लिए गलती कर जो करते हैं। दूसरा है आर्टिकुलेट रहना। आर्टिकुलेट रहना का मतलब है साफ रूप से बोलना कि आप कैसा महसूस करते हैं और क्यों। मेरे फेसबुक न्यूज फीड पे पोस्ट था जो ईसाई धर्म को नीचा दिखाती थी। मैंने उसे पढ़ा और फिर कुछ छोड़ दिया। फिर भी किसी और ने, जो हमारे धर्म की नहीं है, उसने जवाब लिखा, इश्यू जो चीज था ये उनका एकदम ऑपोजिट है। वे अपने समय के लिए अलग थे। वे टैक्स कलेक्टर के साथ खाए, कमजोर औरत और लड़कों की दोस्ती की, और उन्होंने अच्छा समर्थन का हिस्सा दिया। ऐसा होता है कि क्रिश्चियन कोशिश करते दुनिया में सबसे प्यार भरा इंसान होना चाहिए। मैंने पढ़ा और सोचा, मैंने क्यों नहीं लिखा ये। हमें सब यह होना चाहिए कि अपने विश्वास के कारण साफ साफ रूप बोलने में। आप यीशु मसीह के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप गिरजा में क्यों रहते हैं, आप कैसा विश्वास करते हैं। मोर्मन धर्मशास्त्र भगवान का शब्द है। क्या जरूरी है कि प्रॉफिट हमें क्यों जरूरी है कि प्रॉफिट हमें आज भी बात करते हैं? अपनी आवाज और अपनी शक्ति को इस्तेमाल करो. आप क्या महसूस करते हैं, क्या जानते हैं सोशल मीडिया पे शांत बातचीत में? लोगों को बताओ कि आप विश्वास करते हैं. कैसे आप जानते हैं, कैसे महसूस करते हैं कि आप में डाउट हो या नहीं हो? यीशु मसीह आपके लिए क्या है? तीसरा है अलग होना. चलो मैं आपको कहानी बताती हूँ. इस जुलाई पैनामा शहर के बीच में हुई फ्लोरिडा में रोबर्टा अर्सरी ने देखी कि उसके दो छोटे लड़के समुन्दर के 19 मीटर दूर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे. वे पानी में डूब रहे थे. एक आदमी और औरत जो पास में थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फंस गए धारा में. फिर उस परिवार वाले गए और वो भी फंस गए, और जल्दी 9 लोग फंस गए धारा में. वहां कोई रस्सी नहीं थी, लाइफ गार्ड नहीं था. पुलिस ने बुलाया लेकिन अभी तक नहीं आए थे. बीच में जो खड़े हुए देख रहे थे एक थी जेसिका मे सिमंस. उसे और उसके पति ने सोचा कि दूसरे हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाओ. उन्होंने लोगों को बीच से बुलाया. जेसिका ने न्यूज़पेपर से बताया, अलग अलग जात और जेंदा के लोग को एकदम अजनबी लोग को बचाने की कोशिश करते हुए बहुत अच्छा लगा. 80 जान के चेन पहुंचते और वहां आश्चर्यजनक था. बीच पे सब कोई खाली जाना माना सुझाव सोचे, लेकिन खाली एक आदमी और औरत अचानक से एक अलग सुझाव के बारे में सोचे, कुछ नया सोचा. जब हम अपना वचन का पालन करते हैं, हम शायद अपना संस्कृति और समाज के इंसान से अलग बन जाएंगे. हम हमेशा दुनिया में फिट नहीं होंगे, लेकिन सही रास्ता से अलग जो दूसरे लोगों जो मुश्किल में हैं उन्हें बचा सकते हैं. चौथा है डिस्टिंक्ट बनो. डिस्टिंक्ट का मतलब है हमें खास देखें, लोग हमें खास देखें. चलो हम फिर से जेसिका मे सिमंस की बात किस्सा पर जाएं. जब लोग तक इंसान हाथ पकड़े वहां स्विमर्स के पास पहुंचे, जेसिका ने बोला, मैं अपनी सांस रोक सकती हूं और ओलंपिक पूल से आराम से घूम सकती हूं. मैं वो और उसके पति ने बुगी बोर्ड लिया और चेन के साथ में लोगों को पकड़ा और वापस लिया और वापस उनको बीच पर ले आए. जेसिका के पास एक खास गुना था. उसे जानता था कैसे लहर सुरक्षा के संगे बीच तक लाए. जेसिका के पास पुनर्स्थापित सुसमाचार भी वही रकम देखे में खास है, लेकिन हमें यह चाहिए कि खास रही उस पे अमल करें. जेसिका के रकम लोग चाहे सुसमाचार के लिए सीखो. और आखिरी में पांचवा है कि खुशी से पहले से चौथा चीजें करें. खुशी का मतलब यही नहीं कि नकली मुस्कान लेकर चलो चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब है परमेश्वर के कानून निभाना और दूसरों लोगों को बनाए रखना. मेरे पास प्रधान हिंकली की एक कवाहत मेरे पास है जो मैं हर रोज देख सकती हूँ. उन्होंने कहा, देखो कि निराशा से नहीं बढ़ सकते हैं, आप आशावादी बन देखेंगे, विश्वास से काम करेंगे और तब कुछ होगा. एक खुशहाल आशावादी आत्मा की उदाहरण है जो एक 13 साल की लड़की एल्सा थी. उसका परिवार बहुत दूर जाने का सोच रहे थे. एल्सा मूव के बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन उसके पिता ने उसके ब्लेसिंग दिया. जो यंग वुमेन थे वो दूसरी वार्ड लुइजियाना के वार्ड में, उन्होंने एक फोटो भेजा और कहा, प्लीज हमारे वार्ड में आ जाओ. इन लोगों की उत्सुकता एल्सा की को शक्ति ताकत दिया और उसमें आशा भर गई। इस तरह की एनर्जी है जो उसे खुशहाली दी और वह वहां लुइजियाना जाने के लिए थोड़ा अच्छा लगने लगी। कोई भी छोटा चीज आप जो करते हैं दूसरों में खुशी ला सकती है। मैं 15 साल की थी जब प्रधान किम्बल का भाषण दिया हुआ, जो हम 40 साल और ऊपर के हैं, हम प्रधान किम्बल की जिम्मेदारी तब से ही उठा रहे हैं। मैं देखती हूँ 8 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 36 साल के, और मैं ये टॉर्च आपको अभी पास कर रही हूँ। आप गिरजा के आने वाले नेता हैं और आपके ऊपर यही आभारी अब है। इस भविष्यवाणी को सच करो। हम जो 40 साल के हैं, के ऊपर हैं, हम अपने हाथ पकड़ के खड़ा होंगे और आपको आपका एनर्जी महसूस करेंगे। हमें आप जरूरी हैं। एक स्क्रिप्चर सुनो, DNC 49:26-28 से है। लिखा गया है कि देखो मैं आपसे बोलता हूँ, जाओ जैसे हम आपने आज्ञा देता हूँ, अपने पाप के पश्चाताप करो, मांगो और दिया जाएगा, खड़काओ और आपके लिए खोला जाएगा। देखो मैं आपसे पहले जाऊंगा, आपके पीछे रहूंगा और आपके बीच में रहूंगा। देखो मैं यीशु मसीह हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। मैं आप सबको कहती हूँ कि परमेश्वर के बहुत ताइस प्यार के को महसूस करो। अपने आप के प्यार को दूर नहीं रख सकते हैं। जब उसके प्यार को महसूस करोगे तो उनका पश्चाताप का महसूस करोगे तो वो आपका पालन रखेंगे। प्रॉफेट हमें पुकार रहे हैं, हमें कह रहे हैं ईमानदार बनेंगे। क्या आप विश्वास पे साफ रूप से बोलेंगे? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप मुश्किल में भी खुशहाली रहेंगे? अपनी दोस्ती जरूरत की अपार नज़दीक रखेंगे? अपनी बत्ती जोर से जलाएंगे? मैं गवाही देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ओर में होंगे, हमारे बीच में रहेंगे। मैं प्यारे प्रॉफेट थॉमस मॉन्सन के शब्द में कहती हूँ, मेरे प्यारे बहनों, आप रोज हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
बहन सिस्टर यूबैंक, तुम हमारे लिए एक टॉर्च हो। हाँ मेरे प्यारे बहनों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इतनी खुश हूँ कि आप हमारे साथ आपकी रोशनी बांट रहे हैं। हाँ मैं आप सबके साथ बात करूँगी कि क्या जो एक चीज़ हमें करना है। हमें चाहिए स्वर्ग के पिता के बारे में और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहने के लिए, स्वर्ग के पिता के बारे में और जानकारी पाने, उसके साथ हम लोग का रिश्ता अनंत होगा। वो हमारे पिता है और हमारा रिश्ता उनके साथ कभी नहीं बदलेगा। उसका निमंत्रण है कि हम उसके पास आए और उसकी आशीर्वादों को महसूस करें इस जिंदगी और अनंत जिंदगी तक। वो हमसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनंतता तक, तुम्हारी दयालुता और प्यार, तुम मुझ में भरोसा करोगे और मैं तुम पर, तो इसलिए मेरे साथ चलो। क्या हम उसमें विश्वास करते हैं कि हम उसके साथ चलें? हम इस धरती पर बड़ा होने के लिए हैं और महसूस करेंगे, और जब हमारा रिश्ता उसके साथ और मजबूत होगा और जब हम और जानेंगे और हम और सेवा कर पाएंगे।
We must understand that God the Father directed His Son Jesus Christ.
परमेश्वर ने उसके बेटे यीशु मसीह को कहा कि इस धरती को बनाए कि हम कि वो हमारे पाप का प्राइस दे सके, और ये और उसे बताया कि हम पिता के सच्चे गिरजा को बनाए हमारे आशीर्वाद के लिए. क्या आप महसूस कर सकते हैं उनके प्यार को हमारे खुशी के लिए? हमें जानना चाहिए परमेश्वर के प्लान ऑफ सल्वेशन को, कि हम उनके सिद्धांतों को करें और उस तरह उसके जैसे बन सके. ये सच्ची और अनंत खुशी है जो परमेश्वर हमको देता है, और उसके और कुछ सच्चाई नहीं है. हमारे मुसीबतें हमें इस खुशी के रास्ता से निकाल देती है, और हम उसके उस रास्ते से भटक जा सकते हैं. ये छोटी पोम हमें बोलती है कि कुछ बात जरूरी है, कुछ उतना नहीं. कुछ चीज हमारे साथ रहेगी, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं रहेगी. बहनों, क्या जरूरी है? उसके साथ क्या अनंतता तक रहती है? धरती पे मिले अनुभव से उसके आज्ञा पालन अच्छा से करें, हम उसमें सेवा करें, अपनी बहनों और अपने जगह विश्वास करें. एहसान, हम अपनी डरों को विश्वास में बदल दें. ये सब चीजें अनंतता तक रहेगी. अब ये समय है हमारे शारीरिक जीवन में. हमारे पिता हमसे कहते हैं कि प्यार करो जब मुश्किल है, सेवा करो जब आसान नहीं, माफ करो जब तुम्हारा प्राण उस माफ से बिगड़ता है. कैसे हम ऐसे कैसे करेंगे? स्वर्ग के पिता से मदद मांगे, उसके बेटे के नाम से, अपने घमंड को दूर करके उसके रास्ते पर चले. हमारा घमंड के बारे में प्रधान एज्रा टैफ्ट बेंसन ने बात किया था. मैंने सोचा था कि मैं एक जग के जैसे हूँ. उस गंदे बोतल में हमारा घमंड वैसा है. जब हम दूसरों को प्यार कर कोशिश करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम सच नहीं कर पाएंगे. हमारे पाप और हमारा घमंड हमें और पिता से फैसला बहुत दूर करता है. जब सिर्फ उद्धारकर्ता का प्रायश्चित से हम लोग हमारे पाप को धो सकते हैं, और उस ये फैसला खत्म हो जाएगा. हम स्वर्ग के पिता के हाथों में जाना चाहते हैं, तो हम उसकी इच्छा पहले करते हैं, और एक टूटे दिल से कि मसीहा हमें पानी देगा हमारे जग में, एक बूंद और एक बूंद से. जब हम पूछते हैं और मानते हैं, तब हमारा पूरा बोतल पूरा हो जाएगा, और हम इतना महसूस करेंगे कि उसका प्यार, कि हम हमारा बोतल दूसरों के साथ बांटेंगे और उस पानी को दूसरों को दे सकते हैं, कि उनको आशा दे सकते हैं. जब हमारा इन अंदर का बोतल भर जाता है, तो हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे. हमें इटर्नल प्लान के लिए जगह बनाना है. उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए बात करता है कि हम उनके पास जाएं, और मैं तुम्हारे पास आऊंगा. उनके पास आना स्क्रिप्चर्स के बारे में सीखना है, भविष्यवक्ता की सीख को सीखना है, और उनकी इच्छा को समझना है. क्या हम समझते हैं कि यीशु मसीह के पास शक्ति है कि हम वो भगवान के पास हमें ले आ सकता है? पवित्र आत्मा हमको दिखा सकता है कि रिश्तेदार कैसे करें. एक संडे स्कूल टीचर ने हमें एक अनुभव मेरे साथ बांटा। उसका एक शिक्षक जिमी बहुत अकेला था और एक दिन उसे उस शिक्षक को पता हुआ कि उसे कहना था जिमी को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर टीचर ने सबको पूछा कि जिमी को बताओ कि तुमको उसे क्यों पसंद करते हो। हर एक ने एक बार उसे बताया कि जिमी क्यों इतना वो क्यों उनको प्यार करता है और उसके चेहरे में आंसू बहने लगे। ये टीचर ने और ये क्लास ने जिमी किसके साथ एक रिश्ता बनाया और प्यार से सच्चाई बांटा और उसे और अपने आप में खुशी बनाई। मैं इसे बताती हूँ फैसला कम करने के लिए। शायद हमारा दुनिया और हमारे जीवन में ने इस धरती पर हमें सीखने के लिए भेजा है। हमें प्यार करना है और हमें महसूस करना है और हम ये प्यार महसूस करते हैं जब हम परमेश्वर के साथ एक हैं। मोर्मन की किताब हमें सिखाती है कि हम भगवान के साथ जा सकें जब हम यीशु मसीह के अटोनमेंट के बारे में सीखते हैं। तो हमें हमारे फैसला को कम करना चाहिए। आइज़या कहता है कि तब हम जब ये फैसला को छोटा करेंगे तो वो पुराने जगहों को हम भूल जाएंगे। परमेश्वर उसके अटोनमेंट से हमें दरवाज़ा खोलते हैं कि हम परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकते और हम ठीक कर सकते हमारे टूटे हुए जगहों को। इन फैसलों को बंद छोटा करना हमारा कर्तव्य है। एक रात मैं और एक रिश्तेदार के पास कुछ झगड़ा हुआ और उसने कहा कि वो बहुत गुस्से से मुझे कहा कि मैं गलत थी मेरे सारे परिवार के सामने मैं अपने आप को मूर्ख सोचने लगी। उस रात जब मैं अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रही थी तो मैंने परमेश्वर को कहा कि ये रिश्तेदार बहुत मेरे लिए मुश्किल है और मैंने बहुत लंबे समय तक परमेश्वर को कहा कि ये औरत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर शायद पवित्र आत्मा ने मुझे ध्यान दिया कि क्योंकि उसके बाद मैंने सुना कि मैं शायद तुम चाहते हो कि मैं उसे प्यार करूं। मैंने और प्रार्थना किया कि मैं उसे कैसे प्यार करती कर सकती हूं जब मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा दिल टूटा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर आत्मा की मदद से मुझे एक और थॉट आया पर परमेश्वर तुम उससे प्यार करते हो। क्या परमेश्वर आप मुझे थोड़ा सा उस आपका प्यार मुझे दोगे कि ताकि मैं भी उससे प्यार कर सकती हूँ। मेरा दिल कोमल हुआ और मेरा दिल बदलने लगा और मैं देखने लगी कि ये औरत का वैल्यू और उस और परमेश्वर की आंखों से देखने लगी। आइज़या ने लिखा कि समय पर हमारी फैसला बंद हो जाएगी। अगर वो औरत मेरी बदलता दिल नहीं स्वीकार करती, मैं जानती थी कि स्वर्गीय पिता पहचानेगा कि मैंने अपना दिल बदला है जब मैंने उससे मदद मांगा। यीशु मसीह का अटोनमेंट हमारे को रास्ता दिखाता है उसके पास जाने के लिए। हमें इस प्यार में भरोसा रखना है। जब हम अपना दिल उसको और परमेश्वर और उसके बेटे को देते, हमारा दुनिया बदल जाएगा। उस समय भी जब हमारा मुसीबतें हमारे साथ अभी हैं, हम उसके स्वीकार को महसूस करेंगे, उसके डिसाइपल जैसे हम जानेंगे हमारी भरोसा और बड़ी होगी। मॉर्मन कहता है कि हमें पूरे दिल से उससे प्यार करना है और तब हमें आशीर्वाद मिलेगा उससे। उसी तभी हम उस फैसले को छोटा करेंगे। हमारा पिता के अनंत प्यार हमें उसके पास ले आती है। उसने हमें उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा है हमें उसके पास लाने के लिए। पिता के पास जाना ये अनंत प्यार है और हमारा पर्पस है। हमें उनके साथ कनेक्शन बनाना है कि सीखना है कि क्या जरूरी है, उसके जैसा प्यार करना और उसके जैसे बड़ा होना। मैं गवाही देती हूँ कि हमारी विश्वासी रिश्ता उसके साथ से उदारकर्ता के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
We will now be pleased to hear from Sister Joy D. Jones, Primary General President. Following her remarks,
Primary ke General President ke baad choir gayegi True to the Faith.
Sisters, I love you.
Behno, main aapse bahut pyar karti hoon. Jab main West Africa mein Sierra Leone mein ghoom rahi thi, main ek stake primary leader dwara sanchalit ek sabha mein gayi. मरियामा इतनी प्यार महिमा और निडर होकर उगवाई कि लगता था कि वह बहुत देर से चर्च की मेंबर थी, लेकिन वह बहुत नई कॉन्वर्ट थी। उसकी छोटी बहन गिरजाघर में ज्वाइन किया और मरियामा ने को गिरजाघर के क्लास के बुलाया। मरियामा संदेश सुनकर बहुत लाइक हुई। लेसन लॉ ऑफ चैस्टिटी पे था। उसने मांगा कि मिशनरीज उसे और पढ़ाए और उसे प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ का गवाही मिला। 2014 में वह बैप्टाइज हुई और उसकी बच्ची पिछले महीने बैप्टाइज हुई। सोचो, जो दो शिक्षा मरियामा के बदलाव में शुद्धता थी, वह प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ और लॉ ऑफ चैस्टिटी थी। लेकिन मरियामा गवाही ने महाही दिया कि वह मौत के रकम जैसे गई। उसने बोला, जब मैंने मुझे सुसमाचार मिला, मुझे आप के लिए अपना शुद्ध और परमेश्वर के एक पुत्री के रूप में मिला। अब हम बहने भारत में सिंह बहने को मिलती हैं। रेनू जो राइट पे है, गिरजाघर ज्वाइन करने की पहली थी। उसने कहा, गिरजाघर के बारे में पहले ज्वाइन करने मुझे यह नहीं सोचा कि मैं बहुत स्पेशल या खास हूँ। मैं बस यह सोचा कि मैं समाज में हूँ और संस्कृति हूँ में हूँ, लेकिन इंसान के रूप में कोई मोल नहीं था। जब मैंने सुना और सीखा कि मैं स्वर्ग की पिता हूँ और की बेटी हूँ, स्वर्ग के पिता की बेटी हूँ, सब कुछ बदल गया। जीवन सुसमाचार के मेरे जीवन होने से पहले मैं मांगती थी कि सब लोग के लिए दिखाऊं कि मैं कोई खास हूँ। जब मैंने सीखा कि मैं परमेश्वर की लड़की हूँ, मुझे कोई किसी और को नहीं दिखाना पड़ा। मैं यह खुद में जानती थी। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने कहा, एक आत्मा का मोल है उसके परमेश्वर के बनने का। मुझे एक खुशकिस्मत थी एक दूसरी जवान लड़की को मिलने का। मैंने उसे सॉल्ट लेक शहर में प्राइमरी चिल्ड्रन के अस्पताल में मिला। टाइना एक स्कूल में जूनियर थी जब उसका कैंसर मिला। उसने 18 महीना का बहुत बहादुरी लड़ा कैंसर से और फिर वे मर गई बस अभी थोड़े पिछले हफ्ते. टाइना उजियाला और प्यास से भरी थी. जब लोग पूछते आप क्यों टाइना, उसने कहा मैं क्यों नहीं. टाइना उद्धारकर्ता के जैसे बनना चाहती थी. हमारे विजिट्स में मैंने सीखा कि वह अपनी दिव्य मोल जानती है. यह जानने का कि वह परमेश्वर की लड़की है उसे शांति और साहस देती थी. मरियामा, रेनू और टायाना हमें सिखाते हैं कि आत्मा हमें अलग से बताएंगी कि हमारा मोल दिव्य क्या है. सच्चे सच से जानना कि आप परमेश्वर की लड़की हो ये आपके जीवन के हर पहल के को मदद करेगी. प्रेजेंट स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा परमेश्वर आपके पिता हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं, वे और आपके माँ जो स्वर्ग में है आपका बहुत अनमोल मानते हैं. तुम अलग हो और अनंत बुद्धि से बनाए गए हो. आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका मोल क्या है. सुसमाचार का योजना यही है कि लोग को एकदम बेहतर इंसान बनाए जो है कि अनंत प्रगति और परमेश्वर जैसे बनना. मैं दो जोखिम वाले शब्द के बीच में अंतर बताना चाहती हूँ. वर्थ मोल या वर्दीनेस जिसका मतलब है योग्यता. ये एक दूसरे ये अलग हैं. आत्मिक मोल का मतलब है कि आपके रकम अनमोल समझो जैसे स्वर्ग के पिता समझते हैं ना कि जैसे दुनिया समझता है. परमेश्वर का प्यार हमेशा रहेगा. दूसरी तरफ योग्यता मिले जब हम आज्ञा का पालन करते हैं. अगर हम पाप करेंगे हमारी कीमती कभी कम नहीं होगी. हम पश्चाताप कर सकते हैं और करते रहते हैं और यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं. जैसे प्रधान ब्रिगम यंग ने सिखाया जो सबसे छोटा सबसे नीचा आत्मा धरती है वह भी बहुत अनमोल है. चाहे कुछ भी हो हम अपने स्वर्ग के पिता में के नज़र में हमारी मोल इतनी है. यह जानते हुए भी हम कभी ना कभी कितना तड़पते हैं इतनी छोटी फीलिंग से. मुझे भी होता है. सेटन जब झूठ का बाप है ज्यादा कर जब हमारी दिव्य मोल के बारे में. अपने बारे में नीचा सोचना हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है. इसके बजाय हमारे पीछे हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कोई भी हमें ऐसे नहीं कर सकता अब हमारी अपनी आज्ञा के बिना. इसके बावजूद प्रभु हमें कहते हैं कि जब हमारे शुद्ध सोच हो तो वे हमें आशीष निर्धारकर्ता की आशीष होंगे. इस समय ही सबसे ज्यादा जरूरी है यह बात सुनने के लिए अपने सोच के को लगातार साफ रखो. तब ही निर्धारता मजबूत होगी परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा आपके साथ होगी. प्रभु ने एक और नया सच्चाई बताया प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ को. जो कोई परमेश्वर से पाए मांगे परमेश्वर से बताओ कौन सी करे उसे खुशी होनी चाहिए. जब हमें आत्मा महसूस होती है जैसे इस वर्ष में बताया गया है तो हम समझते हैं कि यह स्वर्ग के पिता से आता है. हमें उसे जानकर खुश रहते हैं और आशीष देते हैं. यह सोचो कि एक स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो और आत्मा आपको कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सच्चा है. क्या आप महसूस कर सकते हो कि आत्मा को सुना है और खुश सकते हैं कि आपने यह सुना है. या माताएं जब अपने 4 साल के बच्चों के साथ प्रार्थना बोल रहे हो, तुम कुछ महसूस कर सकते हो कि परमेश्वर उन्हें सुन रहे हैं। हमें एहसास थोड़ा देर के रही, लेकिन आप जानेंगे कि उस टाइम पे आपको पाए कि योग्य समझा जाए। प्रभु हमें हमारे मोल के बारे और उनके महान प्रायश्चित के बलिदान के बीच के रिश्ता समझाते हैं। याद रखो कि परमेश्वर के आंखों में तुम्हारी आत्मा अनमोल है, क्योंकि देखो, प्रभु आपका मुक्तिदाता शरीर में मौत पास, वही कारण वो सब इंसान का पीरा साहिस। बहने, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हम उनके साथ प्यार के कारण उससे बंधे हुए हैं। राजा बेंजामिन भी उद्धारकर्ता के संगे हमें कहा, और सुनो, उनके शरीर का पीड़ा, भूख, प्यास और थकान होगा आदमी से ज्यादा भी, इतना ज्यादा करेंगे, इतनी तकलीफ उनकी ज्यादा होगी, उन और तकलीफ के नतीजा से हम लोग, हमारे दिल में प्यार और आभार से भर जाएगी। एल्डर पॉली कॉलिकर ने सिखाया, जब हम दुनिया की तरफ खींचे हुए रुकावट को हटाएंगे और उसे ढूंढेंगे भगवान को, तो हम अपने आप को खोल देते हैं। उद्धारकर्ता से हम जो प्यार करते हैं और जो इसका ध्यान रखते हैं, जो महसूस करते हैं, अपने कमजोरी से ज्यादा होनी चाहिए। वो अपने झूठ और अपने सिन से बचाते हैं। मैं फिर से बताती हूँ, अगर दुनिया के घिंचाव उद्धारकर्ता में हमें कम उद्धारकर्ता से ज्यादा होनी चाहिए, अगर हम अपने नीचे सोच ध्यान को कम ध्यान देंगे और उद्धारकर्ता को ज्यादा ध्यान देंगे, तो हमारे लिए अच्छा रह गया। बहन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, जबकि अक्सर बहुत आसान है। बहनों, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने यीशु मसीह में। जब उद्धारकर्ता हमें ऊंचा जगह पे रखते हैं, हमें सिर्फ ध्यान से अच्छा देखा जाता है हम कौन हैं और हम उनके नजदीक हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।
Dear sisters, we
प्यारे बहनों, हम अपना बहुत आभारी देते हम हमारे साथ ये शाम बांटने के लिए और क्वायर को आभारी हैं उसके गीत के लिए और सारे बहनों के लिए जिन्होंने काम किया इस शाम को बनाने के लिए. हमारा अगला स्पीकर प्रेसिडेंट उकडॉर्फ होगा. प्रेसिडेंट उकडॉर्फ के बातों के बाद क्वायर गाएगी वी हैव पार्टेकन ऑफ दाई लव और उसके बाद सिस्टर लेस्ली पी लेटन प्रार्थना करेगी.
Thank you, sisters, for these
धन्यवाद
बहनों.
प्यारे बहनों, प्यारे दोस्तों, एक विश्वव्यापी बहनों के सत्र के साथ सामना सम्मेलन शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण और अद्भुत है. जरा सोचो, सभी उम्र पृष्ठभूमि राष्ट्रीय और भाषण के बहनों प्रभु यीशु मसीह के लिए विश्वास और प्यार में एकजुट है. जैसे कि हम हाल में हमारे प्रिय भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट मॉन्सन के साथ मिले थे, उसने हमें व्यक्त किया कि वो भगवान से कितना प्यार करता है और मुझे पता है कि राष्ट्रपति मॉन्सन आपके प्रेम, आपके प्रार्थनाओं और भगवान से आपके भक्ति के लिए बहुत आभारी हैं. बहुत दिन पहले एक दूर देश में तीन बहनों का परिवार रहता था. पहले बहन दुखी थी, उसके नाक से उसकी तोड़े तक और उसकी बच्चा से उसके पैर की अंगूठे तक सब कुछ उसके लिए काफी अच्छा नहीं लग रहा था. जब वो बात करते थे तो उसके शब्द कभी कभी अजीब रूप से निकाले और लोग हंसे. जब किसी ने उसकी आलोचना किया या भूल को उस कुछ आमंत्रित करने के लिए वे धुंधली दौर चले और एक गुप्त स्थान खोज सके जहां वे एक उदास छोड़ देगी और आचरकत होगी. दूसरे बहन पागल थी. वो खुद को बहुत ही चतुर समझते थी, लेकिन स्कूल में परीक्षाओं पर जो कोई भी उस स्कोर चला रहा था, प्रश्न भाव और आकर्षक माना जाता है, लेकिन हमेशा ही लग रहा था कि कोई व्यक्ति मजदूर बेहतर अधिक परेशान बाल या अधिक आशा रखता. कभी कभी वो दूसरों पर दम तोड़ देती थी और ऐसा लग रहा था कि वे एक चीज या कैसे अन्य के द्वारा नाराज होने से हमेशा एक सांस थी. बेशक या उसे किसे भी अधिक आश्चर्यक या लोकप्रिय नहीं बनाता. फिर तीसरे बहन थी. उसके उदास और पागल बहनों के विपरीत वो अच्छी तरह से खुश थी और ऐसे इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपनी बहन के अधिक कुशल के अधिक सुंदर या अधिक सक्षम थी. नहीं, कभी कभी लोगों ने उसे भी अनदेखा कर दिया था या न ही उसे कर भी दिया था, लेकिन उसने से किसे भी प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी थी. इस बहन को गाना पसंद आया. वो बड़ी पिच नहीं थी और लोगों इसके बारे में हंसते, लेकिन उसने उसे नहीं रोक दिया. वो कहती है, मैं अन्य लोगों को नहीं जाने दे रहा हूँ और उनकी राय मुझे ज्ञान से रोकती है. यह सच है कि वो गायन करती हुए अपनी पहले बहन दुखी हो गई. कई साल बीत गए और आखिरकार पृथ्वी पर अपने समय के अंत तक पहुंची गई. पहली बहन जिन्होंने बार बार पता लगाया कि जीवन में निराशा की कमी नहीं थी, अंत दुखी हो गया. दूसरे जो हर दिन नापसंद करने के लिए कुछ नया पाया पागल हो गया और तीसरी बहन जिसने अपना जीवन अपने सभी गीतों का साथ गाना गाया और उसके चेहरे पर आश्वस्त मुस्कुराहट की वो परेशान हुआ बेशक जीवन इतनी सरल नहीं है और लोग ये कहानी में तीन बहनों के रूप में कभी कभी एक आयामी नहीं होती है अगर आप हम में से अधिकतर में है तो हो सकता है कि अपने खुद को एक दो या सात शायद इन तीनों में से तीन नहीं मान्यता दी हो पहले बहन ने खुद को पीड़ित का रूप में देखा था जिस पर कार्य किया गया था ऐसा लग रहा था कि एक चीज एक बात उसके साथ क्या रोता था जिसे उसने उसे दुखी किया जब हम ऐसा करते हैं हम राय के हर हवा के बारे में प्रेरित होते हैं और कभी कभी मौजूद सोशल मीडिया के इस दिन में उन हेवन तूफान की तीव्रता में जान जाती है प्रिय भाइयों आपको किसी को अपने खुशी क्यों देना चाहिए क्या किसी को समझ जो आपका या आपकी खुशी के बारे में बहुत कम प्रभाव करता है आपके परमेश्वर के आध्यात्मिक दीने हैं अपने आप पास अद्वितीय उपहार है आप उसका हाथ में है बहुत अच्छे हाथ प्यार प्यार हाथों देख पार
हाथ The Lord of hosts, the one who created the universe.
और कुछ भी कभी कभी किसी के बारे में नहीं कहता है कि आप इसे बदल सकते हैं परमेश्वर के बारे में जो कहा है उसके मुकाबले उनके शब्द अर्था ही है आप उनकी कीमते बच्चे हैं वो आपसे प्यार करते हैं यहाँ तक कि जब आप ठोकर कहते हैं तब भी जब आप उसे दूर जाते हैं तो भगवान आपसे प्यार करता है यदि आपको गाय त्यागी दिया गए या भूल डर नहीं लग रहे हैं मेरे प्यारे बहनों कृपया इन दिव्य सत्यों को अपने दिल में गहरे से डुबो दे और आप पाएंगे कि दुखी नहीं होने के कई कारण हैं क्योंकि आप को पूरा करने के लिए एक आनंद बाकी है दुनिया के प्रिय उद्धारकर्ता ने अपना जीवन दिया था कि आप उस भाग्य को एक भविष्यवक्ता बनाने के लिए चुन सकें आपने उसका नाम लिया है आप उसके चेले हैं और उसके कारण आप अपने आप को आनंद महिमा के वस्त्रों के साथ परिधान कर सकते हैं दूसरे बहन मैं गुस्से में थी उसकी उदास बहन की तरह उसे लगा कि उसके जीवन की समस्या किसी और की वजह से होती है उसके दोस्तों उसके मालिक और सक्रमियों पुलिस पड़ोसियों चर्च नेताओं वर्तमान पहचान के रुझान और सारे खराब किस्मत को दोषी ठहराया और वो उन सभी पर पंस गई। विश्वास करते थी सवर्ती प्यास और नफरत की से प्रेरित थी। दूसरे तरह वे अच्छी इरादों से प्रेरित थी नहीं। दुर्भाग्य से पागल बहन को कई कुछ सोच की रखा बहुत आम है या एक हाल ये अध्ययन में उल्लेख किया गया था जिसमें प्रतिवंदी समूह के बीच संघर्ष का पता चला था।
This was noted in a recent study that explored conflict between rival groups.
दूसरे शब्दों में प्रत्येक समूह ने सेवन के बारे में अच्छे लोगों के रूप में सोचा, प्यारे, दयालु और सच्चा। ऐसा के विपरीत उन्होंने अपने प्रतिबंधियों को बुरे लोगों के रूप में देखा, निष्प्रभावित, अप्रामाणिक और भी बुराई। वर्ष में पैदा हुआ था दुनिया के भयानक युद्ध में डूब गया था जो पीड़ादायक दुख और दुनिया को दुख भाषण करता था। यह युद्ध मेरे अपने देश का कारण उन लोगों के एक समूह द्वारा किया गया जिन्होंने कुछ अन्य समूहों को बुराई के रूप में पहचान लिया और उनके प्रेरित गणना को प्रसारित किया। जब मैं सोचता हूँ कि पीस बीन सारी में जर्मनी में क्या हुआ, आपको ही हमसे विरोध करता है या असमाहत होता है, तो यह मानने की प्रलोभन होता है कि उनके साथ कुछ गठबंध होनी चाहिए।
Once you degrade a group of people, you are more likely to justify words and acts of violence against them.
हमें हमेशा शहीद के लिए खड़ा होना चाहिए और ऐसे समय होता है जब हमें उस कारण के लिए हमारे आजीव उतनाए पड़ेंगे। हालांकि जब हम क्रोध के साथ ऐसा करते हैं या हमारे दिल से नफरत करते हैं, जब हम दूसरों को छोड़ शर्मिंदा या छुपी देने के लिए उदात हैं, सब संभावना है कि हम धार्मिकता में ऐसा नहीं कर रहे हैं। उदारकर्ता ने क्या सिखाया है? मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो जो तुम्हें शाप देते हैं, उनको अच्छा ना करें जो आपसे घृणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रयोग करना और आपका सताएगा कि तुम स्वर्ग में अपने पिता के पुत्र हो। यह उदारकर्ता का रास्ता है। यह बड़ों को तोड़ने में पहला कदम है जो दुनिया में इतना क्रोध, गर्न, विभाजन और हिंसा पैदा करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, मैं अपने दुश्मनों से प्यार करने को तैयार रहूँगा अगर वे ऐसा करने को तैयार हों, लेकिन यह वास्तव में कोई प्रकार नहीं पड़ता क्या या करता है। हम अपने स्वयं के शिष्यत्व के लिए जिम्मेदार हैं और दूसरों के साथ हमारे साथ व्यवहार करने के लिए कुछ भी नहीं थे। शायद हमारे दुश्मनों से प्यार करने का हमारा प्रयास उनके दिल को नरम करेगा और अच्छे के लिए उन्हें प्रवृत्त करेगा। शायद यह नहीं होगा, लेकिन यह यीशु मसीह के पालन करने के लिए हमारे प्रति में परिवर्तन नहीं करता है. इसलिए यीशु मसीह के चर्च के सदस्य के रूप में हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे. हम क्रोध से मुक्ति के मुक्ति या नफरत करेंगे. हम अपने दिल को परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए प्यार से भर देंगे. हम दूसरों को आशीष देने और उनसे मंत्री बनने के लिए भी पहुँचेंगे, यहाँ तक कि जो हमें काफ़ी काफ़ी उपयोग करते हैं और हमें सताते हैं. तीसरे बहन यीशु मसीह का प्रामाणिक शिष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. किसी तरह उसने अपने चेहरों को चेहरों और घरना और शानक के बावजूद उनकी आस्था और आशा को बनाए रखे. वो आनंदित रहते हैं. हम अपने दृष्टि वफादार के लिए जो महिमा के खुशियों पर निर्भर करते हैं उसके बारे में कैसे तय करते हैं. मेरा मानना है कि जवाब एक सपने में पाया जा सकता है कि एक भविष्यवक्ता ने हजारों साल पहले किया था. भविष्यवक्ता ने नाम लिया है और उसका सपना अनमोल और अब्द किताब मोमन में दर्ज किया गया है. अपने सपने में लिहाई ने एक विशाल मैदान देखा और इस्मान के आश्चर्यजनक पेड़ था जो वर्णन से बड़े सुंदर था. उन्होंने लोगों के बड़े समूह को वृक्ष की और अपना रास्ता बनाते देखा. वो अपने शानदार फल का स्वाद चाहते थे. उन्होंने महसूस किया और भरोसा दिलाया कि वे उन्हें बहुत खुशी और शांति कायम करेंगे. एक छोटा रास्ता था जिसे पेड़ का जन्म दिया और साथ में एक लोहे की छड़ी थी जो उन्हें पथ पर बने रहने में मदद करती थी. और शायद और अधिक खतरनाक भीड़ के आसपास एक बड़ी और विशाल इमारत से आ रही थी. अफसोस की बात है कि इस महाजग में कुछ लोगों को भी आश्वस्त हुआ कि वे पेड़ तक पहुंच गए और चमत्कारिक फल के स्वाद चखाया और शर्म महसूस करने लगे और घूमते रहे. शायद उन्होंने सोचा है कि अगर वे पेड़ से दूर हो जाए जीवन आसान होगा. हो सकता है कि वे अब और नहीं उपास यहाँ से होगा. और वास्तव में जो लोग उन पर उस पास कर रहे थे ऐसे लोगों की तरह देखते थे जो काफ़ी खुश थे और एक अच्छा समय था. प्यारे बहनों, प्यारे दोस्तों, अगर आपको लोहे की छड़ी पर तेजी से पकड़ना और मुक्ति की तो तेजी से चलना मुश्किल हो जाता है. अगर दूसरों के हंसी और उपहास जो आपको इतने आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो आपको यदि आप अनुत्रित प्रश्नों या सिद्धांतों से परेशान हैं तो आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं. यदि आप निराशों के कारण उदास महसूस करते हैं तो हम आपको लिहाई की सपने को याद करने का आग्रह करता हूँ. कभी लोहे की छड़ी नहीं छोड़ दो परमेश्वर का वचन. और जब कोई आपको भगवान कि प्रेम का भाग लेने के लिए लजित होने का प्रयास करता है तो उन्हें अनदेखा करें. दुनिया के द्वारा प्रशंसा और बाद अविश्वानी आस्ते और अनुस्थित है. परमेश्वर के बाद वादे निश्चित रूप से सच्चे और हर्षित आभार और हमेशा के लिए है. मैं आपको एक उच्च परिप्रश्न से धर्म और विश्वास पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ. महा और विश्वास इमारत में कुछ भी नहीं की. वास्तव में आंख ने नहीं देखा है, न कानों ने सुना है, न मनुष्य के हृदय में प्रवेश किया था. वास्तव में आंखें ने नहीं देखा. मैंने अपने लिए सीखा है कि यीशु मसीह का समाचार में शिष्य का रास्ता आनंद का मार्ग है. मैं गवाही देता हूँ कि पवित्र आत्मा के शक्ति और शक्ति से आप अपने लिए ये सीख सकते हैं. इस बीच यदि पथ आपके लिए मुश्किल हो जाता है, जो मुझे आशा है कि आप कुछ चर्च का हमारे अद्भुत संगतों में शर्म और ताकत मिलेगी. प्राथमिक युवा महिला और राहत समाज वे पथ के रास्ते हैं जहां आप आगे की यात्रा के लिए अपने आत्मवाविश और विश्वास को नवीनीकृत कर सकते हैं. प्राथमिक में सीखने वाले चीजें आप अतिरिक्त सच्चाइयों के लिए तैयार करते हैं जो आप युवा महिलाओं के रूप में सीखते हैं. रास्ते में प्रत्येक कदम के साथ आपका विश्वास, करुणा, दान, पुण्य और सेवा के कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए अपने प्रेम को प्रचारित करने के लिए आंतरिक अवसर दिया जाते हैं. शिष्यवाद शिष्यत्व की मार्ग को चुनना आनंद आनंद और आपके दिव्य प्रकृति के पूर्ति के लिए होगा. यह आसान नहीं होगा. आपको सबसे अच्छी जरूरत होगी. आपकी सारी खुफिया विश्वास, अखंडता, शक्ति, दर्द, संकल्प और प्रेम. लेकिन एक दिन आप अपने पड़ोसियों पर ध्यान देंगे और वो आप कितने आभारी होंगी कि आप दर्द बने रहे जो आपने विश्वास किया और यह कि आप पथ से नहीं निकल गए. जीवन के बारे में बहुत से बीते हो सकती है जो आपकी नियंत्रण से बाहर नहीं, लेकिन अंत में आपके पास अपना गंतव्य और रास्ते में अपने की अनुभव चुनने के शक्ति है. आप परिस्थितियों को आपको दुखी करने की अनुमति नहीं दे सकते. आप उन्हें पागल बनने की अनुमति नहीं दे सकती. आप आनंदित हो सकती हैं कि आप ईश्वर के बीते हैं. आप भगवान की कृपा और यीशु मसीह के प्यार में खुशी और खुशी पा सकते हैं. आप खुश हो सकते हैं. मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप अपने दिल को भगवान की प्रचुर मात्रा में और असीम भलाई की लिए आभार के साथ बढ़े. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ऐसा कर सकते हैं. मैं अपनी आत्मा के सभी से एक साथ प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन के वर्ष की और बढ़ते बढ़ने के लिए विकल्प चुनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आजब उठाने और अपने जिंदगी प्रार्थना की एक शानदार सिम्फनी बना लेंगे, जिसमें भगवान के प्रेम, उनके चर्च के चमत्कार और यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया को ला सकते हैं। सच्चा शिष्यत्व का गीत कुछ के लिए बहुत ही जोरदार लग सकता है। समय की शुरुआत के बाद से ऐसा इसलिए रहा है, लेकिन हमारे स्वर्ग पिता के लिए और उन लोगों को प्यार और सम्मान करते हैं, ये एक बहुत ही अनमोल और खूबसूरत गीत है। भगवान और अन्य लोगों के लिए प्यार और सेवा को बचाने का और पवित्र गीत। मैं आपको भगवान के एक प्रस्तुत के रूप में आशीर्वाद देता हूँ कि आपको खुशी और उत्साह से परमेश्वर की बेटी के रूप में कामयाब होने के लिए शक्ति और साहस मिलेगी, जबकि हर दिन अनुयायी के गुरुवशली मार्ग पर चलने में खुशी होगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Our beloved Father in heaven,
स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं खुशी से और धन्यवाद देते हैं जो चीजें हमने आज सीखे हैं अपने नेताओं से। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तोहफा देंगे कि हम ये सब याद रख सकें और अपने बहनों के साथ यहाँ से जाएंगे और अपना प्यार भेंटेंगे और आपके सारे बच्चों के साथ. इन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में. आमीन.